ओम शांति। बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर टाइटल दिया, होली होली हंस। शब्द कितना अच्छा है, हंस समान पवित्र भी और परख शक्ति और निर्णय शक्ति वाले भी। मुरली की ये मुख्य बात है। एक बहुत अच्छा उदाहरण हम ले लें। अगर हम रास्ते में जा रहे हों और हमने दो केले खा लिए हों, छिलके डालने की इंतजार कब तक करेंगे? जब तक किचरे डालने का स्थान न आ जाए, है ना? आजकल इधर उधर तो नहीं फेंकेंगे, तो किचरा किचरे को आकर्षित करता है ना। सोच ले क्या मतलब है इसका। हमारे अंदर अगर किचरा है, गंदगी निगेटिविटी, तो हम बाहर की गंदगी को आकर्षित करते हैं, तब हम होली हंस नहीं बन सकते। होली हंस पवित्र। खुला बैठो बहनों, खुला जगह खाली पड़ी, इधर आ जाओ, मुझे ही कहना पड़ेगा बहनों खुला। हाँ समझते हैं, खुला मुंह खुला नहीं उबले, जगह डिस्टेंसिंग। तो हम सभी होली हंस हैं। क्या करना है हमें? क्या करता है हंस? अभी हमने तो देखा नहीं, भी आप में से किसी ने देखा हो। कहते हैं दूध अगर रख दिया जाए उसके आगे तो दूध दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। पता नहीं क्या भाई छलनी है क्या उसके मुंह में। अच्छा ये बात है, वाह इन्होंने राज बता दिया भाई। कि उसको जब मुंह डालेगा चोंच, वो इतनी खट्टी है कि आप ये दूध फट जाएगा, पानी निकल जाएगा, वो अच्छे माल को ले लेगा। तो हम भी अच्छी चीजें ग्रहण करें, बुरी चीजों को छोड़ दें, क्योंकि संसार में बुरी चीजों की तो कमी नहीं है, लेकिन ग्रहण करने वाले तो होली हंस है ना, उन्हें ऐसी चीजों को ग्रहण नहीं करना है। बाबा हम सबको ऊंची नजर से भी देखते हैं और बहुत महान बनाना चाहते हैं। कितना महान बोलो? बाप समान महान बना देना चाहते हैं। ये तो फाइनल उत्तर होता ही है, लेकिन हमारे वाइब्रेशंस दूसरों के लिए सुखदायी हों। आज मैं एक मुरली रिकॉर्ड की, उसमें बाबा की एक बहुत ही सुंदर लाइन थी। आप एक मुरली आगे सुनेंगे 14 अप्रैल की। मैं तो उस मुरली को देखते रह गया कि ये कब की मुरली है भाई, देख लेना जिसके पास हो। 14 अप्रैल भगवान डायरेक्ट बात कर रहा, और कितनी गहरी बातें हैं उसमें। नॉर्मली साकार मुरलियों में सतयुग की बातें, मुझे याद करो, फिलोसफी होती है, लेकिन वो कितनी गहरी है, जैसे मामा टॉपिक्स पर बोलती थी। तो एक बहुत सुंदर बात थी उसमें, याद रखेंगे सभी, मुझे तो आज से याद हो गई वो। तुम्हारी नस नस में ईश्वरीय ताकत भरी हुई है, देख लो। तुम्हारी नस नस में, रिपीट करो, ईश्वरीय ताकत भरी हुई है। कितनी बड़ी चीज है। हम सभी नोट करें बाबा से, बाबा की मुरलियां तो रोज सुनते हैं, अव्यक्त तो हजारों सुनी हैं। बाबा हम सबके अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं, हमारे अंदर जो बहुत प्योरिटी है उसको जगाते, हमें रियलाइज कराते हैं, तुम ये नहीं हो जो तुम अपने को समझ रहे हो, तुम कुछ बहुत बहुत महान हो। तो मैं सोच रहा था कितनी अच्छी बात है ये, जैसे गुलजार दादी थी हमारी, अब उनके तन में हजारों बार भगवान आए, नस नस में क्या भर गया होगा, बाबा के वाइब्रेशंस। बहुत अच्छी बात दादी के लिए पता चलती जाती है, कोई कोई सुनाते हैं, क्योंकि तब तो कोई सुनाता नहीं था। तो दादी को अंतिम समय जैसे संपूर्ण रूप से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उस कहीं का कुछ भी देख सकती थी। ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। और वही एक ऐसी आत्मा रही जिसके लिए बाबा ने कहा वतन में ही रहेंगी, त्रिमूर्ति काम करेंगे वतन से, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और गुलजार दादी। तो देखो उसके अंग अंग में परमात्म वाइब्रेशन समय होंगे ना, हम समझ सकते हैं ना, 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 14 घंटे उसके तन में भगवान बैठे, कैसे वाइब्रेशन समय होंगे। हम भी बाबा को याद करते हैं, मधुवन में रहते हैं, मधुवन वासियों को भी इस बात का एहसास नहीं है कि यहाँ के सुंदर वाइब्रेशंस उनके अंग अंग में समाये हुए हैं। ये ब्रह्मा भोजन जो हम खाते हैं, अगर इसको संपूर्ण योग युक्त होकर खाया जाए, महावाक्य है ये बाबा का, तो ये हमें पावन बनाने में सबसे बड़ा काम करेगा। जैसे योग से आत्मा पावन बनेगी, वैसे ही भोजन से, क्योंकि शरीर को भी हमें पावन करना है, भले ये पति तत्वों का है, पर इसमें रहते हुए आत्मा, दोनों चीजें विचार करो, आत्मा इसमें बैठी है अंदर, लेकिन शरीर के इम्प्योर वाइब्रेशंस आत्मा को टच ना करें, है ना कोई ये बात। उसके लिए भोजन हम बहुत योगयुक्त खाएं बनाएं, तो शरीर प्योर होता जाएगा और आत्मा उसके निगेटिव इफेक्ट से मुक्त होती जाएगी। तो बहुत बड़ा काम होगा, सब इस बात पे ध्यान देंगे। ब्रह्मा बाबा को किसी ने चित्रों में भी देखा हो भोजन खाते हुए, चित्र तो है ना, मगन अवस्था, हमारे यहाँ शांतिवन में किचन में सामने सामने लगाया ये बाबा का भोजन खाते हुए, थाली में रोटी और चावल और सब्जी ऐसे दिखाई दे रही हैं, उसको देख के मजा आता है, बहुत बड़ा है, मगन है बाबा। तो भोजन भी बहुत बड़ी चीज है हमारे प्योरिटी के लिए। तो बाबा हमें रोज रियलाइज कराते हैं तुम्हारे कर्तव्य भी महान है, तुम भी महान हो, तुम्हें बहुत कुछ बाबा से मिला हुआ है, उसको पहचानो, पहचानना है हमें। जितना जितना हम उसको रियलाइज करते जाएंगे, हम उसका स्वरूप बनते जाएंगे। बहुत चीजें तो हमारे पास हैं, बहुत चीजें हमें लेनी भी हैं, लेकिन बहुत खजाने हमारे पास भी हैं। तो हम बाबा की इन मुरलियों से अपने को वही टाइटल देते चलें जो बाबा हमें देता है, तुम होली हंस हो, इसलिए तुम्हारी नजर किसी की कमियों पर, गंदगी पर जानी नहीं चाहिए, तब तुम रियल सेंस में होली हंस बन जाओगे। परखने की और निर्णय करने की शक्ति हो। अब ये कहां से आए, बाबा की बात सुन के मैं सोच रहा था, जिनके पास ये है, जिनके पास नहीं है नहीं है। अगर इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई, स्वमान भी और बुद्धि को स्वच्छ भी। स्वच्छ बुद्धि दर्पण बन जाएगी। दूसरा हमारे सामने आएगा, फट से समझ में आएगा ये व्यक्ति कैसा है, रियल है, धोखे वाला है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। क्योंकि कलयुग में लोग झूठ भी ऐसा बोलते हैं, सच से भी पावरफुल लगेगा, इससे सच्चा व्यक्ति तो कोई नहीं है। तो परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए ये, और निर्णय शक्ति के लिए भी बुद्धि बहुत अच्छी, लेकिन ज्ञान भी उसमें फुल हो। जो पीछे मुरली में था, ऐसा ना हो कि किसी चीज में निर्णय कर लिया जाए और फिर सोचे ये ना होता, ये होता तो बड़ा अच्छा होता, ये कर लेते तो बिल्कुल ठीक हो जाता, ये न रह जाए, परफेक्ट हमारे निर्णय हो जाएं, इनके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास। लेकिन एक अभ्यास और, सवेरे उठते ही आप केवल 7 दिन कर लें, 1 मिनट का भी प्रयोग नहीं है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, पहले 3-4 बार कर लें, ताकि हम इस स्वरूप में आ जाएं कि मैं बहुत पावरफुल हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ है जो भी शक्तियां हैं उनका मैं मालिक हूं। और फिर संकल्प करें गहराई से, मेरे पास संपूर्ण परख शक्ति है, तो जागृत हो जाएगी। फिर अगले 7 दिन मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है, एक ही बार कर लेना है, लेकिन 5-7 बार मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करके, तो कहीं धोखा नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। अगली बात थी मुरली में जो बहुत सूक्ष्म परिवर्तन की है, वृत्ति बीज है, विधि सिद्धि याद आ गई। जैसी वृत्ति हमारी दूसरे के लिए बन जाती है, वृत्ति का सीधा सा अर्थ विचारधारा, दृष्टिकोण, इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं, भाई ये व्यक्ति ऐसा है। मान लो एक व्यक्ति के बारे में हमने फाइनल निर्णय कर लिया बुद्धि में, ये व्यक्ति झूठ बोलता है, इस पर विश्वास न करना, तो चाहे वो सच भी बोल रहा होगा, ऐसा तो नहीं ना वो सदा ही झूठ बोलता हो, तो हमें लगेगा कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, उस तरह का व्यवहार हो जाएगा, उस तरह का संबंध संपर्क रहेगा। एक व्यक्ति था, है तो अभी भी, उसने कोई छोटी मोटी चोरी कर ली थी। अब वो मेरे कमरे की आगे की तरफ से रोज जाता था, अब मुझे डर लगता था मेरा कुछ ना उठा ले जाए ये। फिर एक दिन वो मेरे पास आ गया, मैंने कहने लगा भाई मैंने ये गलती की थी, मैं कोई चोर नहीं हूं, लेकिन किन परिस्थितियों में मुझे ये कर लेना पड़ा था, एक बहुत थोड़ी सी चोरी, कोई बहुत लंबी चोरी चोरी नहीं थी। तो मैं सोचने लगा, देखो मेरी भी वृत्ति हो गई थी कि ये व्यक्ति चोर है, तो मैं अपना दरवाजा बंद करने लगा था, क्लास कराने आऊं तो ताला लगा देता था कि यार ये इधर घूमता है, कुछ उठा न ले जाए, वृत्ति से व्यवहार हो जाता है ना, वैसी दृष्टि बन जाती है हमारी। हम इसको शुद्ध करेंगे और हमारी श्रेष्ठ वृत्ति दूसरों की वृत्ति को बदल भी सकती है, यह है हमारी सबसे बड़ी साधना। कि दूसरा व्यक्ति कैसा भी है, हम अपनी श्रेष्ठ भावनाओं से, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से उन्हें बदल सकते हैं। बदल सकते हैं या नहीं, हम माताएं जवाब दें। आपके घर में बच्चे हैं, कोई बच्चा बुरे संग में चला गया है, जो आजकल की एक कॉमन समस्या है, पिछले 40-50 सालों से ये बढ़ी हुई समस्या है कि बहुत सारे युवक बुरे संग में जाते हैं। पहले तो कन्याएं नहीं जाती थी, अब वो भी पीछे नहीं है, समान हो गया ना अभी अधिकार, तो उन्होंने सोचा हम क्यों पीछे रह जाएं। अब आपका लड़का बुरे संग में चला गया है, आपको उसकी चिंता है, वो देर से घर में आता है, वो कभी पी के भी आता है। आज की एक घटना सुना रहा हूं, किसी माता की बेचारी की समस्या थी, रोने लगी। एक लड़का एक लड़की, लड़की फर्स्ट क्लास, लड़का बुरे संग में, पढ़ता नहीं है, कहता है मुझे तो विदेश जाना है, पढ़ता नहीं है, वो सोच रहे इसको क्या करने विदेश भेजें। तो एक वृत्ति हो गई ना, भाई ये बुरे संग में है, ये पढ़ता नहीं है, ये बिगड़ गया है। अब इस वृत्ति को हम ठीक करें, पहले अपनी वृत्ति को ठीक करें, और हमारे वाइब्रेशंस में बहुत ताकत है। अगर हम रोज सोचने लगे ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये श्रेष्ठ राह पर चल जाएगा बहुत जल्दी, ये पढ़ाई में रुचि लेगा, ये अपने भविष्य के बारे में विचार अवश्य करेगा, तो हमारे वाइब्रेशंस बदलेंगे। और माँ के वाइब्रेशंस बच्चे को जरूर असर डालते हैं, औरों पे देर से डालेंगे, पर माँ से बच्चे गहराई से जुड़े रहते हैं, इमोशनल रिलेशनशिप रहता है, एक भावनात्मक संबंध है। तो माताओं को विशेष ध्यान देना है कि अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से अपने परिवार को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। पहले आप और पहले मैं, याद करो। बच्चे क्या कर देते हैं, उल्टा थोड़ा कर देते हैं। पुरुषार्थ करना है, पहले आप करो, आप पुराने हो ना, पहले आप करो, हम फॉलो करेंगे आपको। और सेवा करनी है, आप पुराने हो तो क्या हुआ, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हम हैं, पहले मैं। तो उल्टा सा हो गया थोड़ा थोड़ा कहीं, लेकिन संगठनों में देखो बाबा ने कितनी डिवाइन चीज हमें सिखाई हुई है। संगठनों को हमें एकता में बांधना है, परिवार की गुड फीलिंग में लाना है, तो दूसरों को आगे बढ़ाते चलें। पहले आप, पुरुषार्थ में पहले हम करेंगे तो हमें देख दूसरे भी करने लगेंगे, लेकिन और चीजों में जहां देने की बात है पहले आप करो, तो इससे स्नेह बहुत बढ़ेगा संगठन में, अपनापन बहुत बढ़ेगा। और कोई भी संगठन, चाहे आपका परिवार ही क्यों ना हो, क्यों माताओं में तो नेचर है ना, भोजन पहले खुद खा लेते हैं या सबको खिला के बाद में खाती हैं, बोलो, नेचुरल है ना ये। कोई माता ये नहीं सोचेगी मैं भी थोड़ा पहले निकाल के तो रख लू अच्छा अच्छा माल, पता नहीं पीछे बचेगा या नहीं। देखो माताओं में एक संस्कार, और ये कितना सुंदर संस्कार है, भूख भी लगी होगी तो भी पहले वही सब खा लें, बच्चे पहले खा लें। तो ये जो पहले आपका संस्कार है, हम इसे हर जगह जागृत रखेंगे। तो होली हंस हैं हम सभी, बाबा जब ये शब्द कहते थे, आज बाप दादा होली हंसों की मंडली में आए हैं, कितना अच्छा लगता है। भगवान कितनी ऊंची नजर से हम सबको देखते हैं, क्या वैसे ही ऊंची नजर से हम भी अपने को देखते हैं, या हमें अपनी केवल कमी नजर आती है, हम तो छोटे हैं, साधारण हैं, हल्का पुरुषार्थ है हमारा। तो बाबा जितनी ऊंची नजर से देख रहा है हमें, कि यही विश्व का कल्याण करेंगे, यही मेरी सेना है जो मुझे मदद कर रही है, मेरे कार्य को संपन्न करेंगे, उतनी ऊंची नजर से हम भी अपने को देखते हों, इसको ही स्वमान कहते हैं। स्वमान पे बहुत सारी बातें आती रहती है ना, स्लोगन वरदान में, आज कल भी आया ना शायद, आज हाँ, स्वमान की तो मुरली चली है। तो हम अपने इस स्वमान को अच्छी तरह पहचाने। आज मेरे से कोई बात कर रहे थे स्वमान की, तो तो देखो ये सच्ची बात है कि ब्राह्मणों में भी अनेक लोग स्वमान की गहराई को समझ नहीं पाते। दो चीजें हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर हैं, स्वमान और मनन, ज्ञान मनन। कोई भी चीज अगर हम मनन नहीं करते तो एक सिंपल महावाक्य है बाबा का, और अगर हम उस पर मनन करके स्वीकार कर लेते हैं तो वो हमारा है। स्वमान के बारे में तीन चीजें सब याद रखेंगे। जो कुछ बाबा ने हमें कहा उसे स्वीकार करना। हम अपने से पूछेंगे, हम स्वीकार करते हैं? बहुत लोग नहीं करते। जब मैं शुरू में इस पे क्लास कराया करता तो मैं छोटा सा उदाहरण देता था। बाबा ने कहा तुम महान आत्माएं हो, हम सब ने सुना, अनेकों ने अंदर ही अंदर से इसको रिजेक्ट कर दिया, मैं नहीं हूं, वो जो आगे बैठे ना वो हैं, जो पुराने हैं ना वो हैं, हम तो साधारण हैं। सभी अपने को चेक करो, हमने बचपन से और अब तक हमारा जीवन किस तरह चला है उस पर एक जरा नजर डाल लो और आज अच्छी तरह उसका विश्लेषण करो। किसी का जन्म गरीब घर में हुआ, उसने दूसरों को अच्छा अच्छा देखा, माना पढ़ सकते हैं कहीं भी अच्छा पैसा लगाकर, उनके पास बाइक है बहुत अच्छी, इनके पास साइकिल भी नहीं है, उनके कपड़े सुंदर हैं, इनके पास ज्यादा अच्छे नहीं हैं, वो ट्यूशन कोचिंग कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, तो भावनाओं पे इफेक्ट हुआ या नहीं? यहां भी आप में से कई बैठे होंगे ऐसे जो इन परिस्थितियों से गुजरे हैं। क्या हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी आज कोचिंग करते, हम भी मेडिकल में जाते, हम जा नहीं सकते हैं, तो क्या हुआ? एक निगेटिव भावना जीवन में बढ़ती गई। दूसरा केस देखो, कोई विद्यार्थी है बचपन से ही, वो होशियार नहीं था, उसकी थर्ड डिवीजन आती थी, लेदे के पास होता था, दूसरे होशियार थे, इसके मन में बचपन से ही हीन भावनाएं आती गई, मेरे को बुद्धि कम है, मैं ज्यादा होशियार नहीं हूं। तीसरा देखो, एक व्यक्ति बचपन से ही बहुत सफल हुआ, दूसरा व्यक्ति बचपन से ही असफल हुआ, फेल्योर, हर कदम पर हर क्रम में असफलता मिली, उसके जीवन में निराशा आ गई। अब जब बाबा स्वमान याद दिलाता है तो उनको बहुत देर लग रही है, उनके मन में ये बैठ गया, हम कुछ नहीं है, हम तो गरीब हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमने बहुत मेहनत कर ली, हमारे भाग्य में पैसा है ही नहीं, हमारे भाग्य में सफलता है ही नहीं, तो हीन भावना ने पूरे स्ट्रांगली पैर जमा लिए हैं अंतर मन में, इसको हटाना है। अब चिंतन करें सभी, अब जब हम भगवान के पास आ गए, बाबा इसी का उदाहरण दिया करते हैं, गरीब बच्चा, गरीब का बच्चा साहूकार को एडॉप्ट कर ले तो पहले दिन से उसको नशा हो जाएगा या नहीं? अब मैं साहूकार घर में हूं। तो पहला जीवन चाहे किसी का कैसा भी था, अब उसे भुलाना है, उसके इफेक्ट को भुलाना है। विचार कर लो अच्छी तरह, उसका जो निगेटिव इफेक्ट पड़ा है उसको खत्म करके अब बाबा जो हमें कह रहे हैं उस इफेक्ट को अपने अंदर भरना है। बहुत बड़ी चीज बाबा कह रहे हैं। देखो भगवान कहता है तुम रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो, संसार में सबसे अधिक धनवान। बहुत लोग सोचते हैं ऐसे ही चढ़ाता रहता है बाबा, हम कहां धनवान है, टिकट भी मुश्किल से खरीद के सफर करके आए हैं मधुबन में, ऐसे ही चढ़ा रहा है, हमें खुश करता है बाबा। पर ये नशा किसको चढ़ेगा? बाबा राम नहीं, जिनके पास ईश्वरीय खजाने होंगे, जिसे बहुत सुख मिल गया हो, जिसे गहन शांति प्राप्त हो गई हो, जिसका जीवन खुशियों से भर गया हो, उसे कभी नहीं लगेगा मैं गरीब हूं। ठीक बात है या नहीं? कभी नहीं लगेगा। वो जब गरीबों के मुंह लटके हुए देखेगा तो क्या लगेगा? मैं richest in the world हूं। सचमुच तो धनवान वही है जिसको कोई इच्छा नहीं, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो सबसे बड़ा धनवान। और जो धन के पीछे भटक रहे हैं, कहीं तृप्ति नहीं है, वो धनवान नहीं है, वो संपन्न नहीं है, वो संतुष्ट भी नहीं है। तो जो पास का इफेक्ट किसी के ऊपर भी निगेटिव रहा हो, उसको खत्म करके अब मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मुझे भगवान से सफलता का वरदान मिला है, ये जो स्वमान हमारे हैं इनमें अब स्थित हो जाएंगे सभी। तो मन की बहुत सारी निगेटिव वृत्तियां खत्म हो जाएंगी। ये स्वमान बहुत बड़ी चीज है, इसे अच्छी तरह समझ लेना है। मन के अंदर छुपी हुई अनेक कमजोरियां हजारों वर्ष की भी समाप्त हो जाएंगी स्वमान से। ये स्वमान ही एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आज से पहले किसी ने नहीं सिखाई थी, न इसकी चर्चा वेदों में है, न दर्शनों में, न उपनिषदों में, न गीता में। तुमात्मा हो, इतना ही करके पूरा कर दिया है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे के पूरा कर दिया है। लेकिन मैं आत्मा स्वमानधारी, कौन कौन से मेरे स्वमान हैं? अब देखो, एक चीज को आज फिर स्वीकार करेंगे। लास्ट टाइम जब बाबा आखिर में, कौन सी तारीख थी, 13-23, तो बाबा ने कहा आज बाप बच्चों को एक सौगात दे रहे हैं। करो याद, किसको याद है? बोलो बोलो, पहुंच रहे हैं आप धीरे धीरे माता जी। कितनी अच्छी सौगात दी, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। अब क्या हम सबने इस बात पे गौर किया? भगवान कह रहा है मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि वो सदा मेरे साथ है, या हम कह रहे हैं बाबा तो साथ देता ही नहीं? सोच लो क्या अंतर हो गया दोनों में। भगवान ने सौगात दे दी, अलौकिक सौगात भगवान की। मैं सब थोड़े चेंज कर देता हूं, मैं आज से सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और हम क्या कह रहे हैं? हम भी इसको स्वीकार कर लें, आज से सर्वशक्तिवान हमारे साथ रहेगा। साथ आ गया है, भगवान का साथ मिल गया है हमें, तो ये सबसे बड़ी गिफ्ट हो जाएगी ना। इसको स्वमान कहते हैं। तो पहला कदम है स्वीकार करना, और दूसरा कदम है उसके नशे में रहना, और तीसरा कदम है उसको बार बार स्मृति में लाना। साकार मूल्यों में बाबा एक बात बहुत कहते थे, नशे में रहो कौन पढ़ाने आया है। सब सुनते हैं ना, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, कौन पढ़ाने आया है। और जब ये नशा चढ़ जाता है, मुरली सुनते हुए विशेष रूप से, कौन पढ़ा रहा है, तो बुद्धि में ग्रहण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो ध्यान देंगे इस बात पर कि हम उन सब स्वमानों को स्वीकार कर रहे हैं जो बाबा ने हमें दिए, स्वयं भगवान ने दिए हैं। बस इस अंतर को मिटा देना है। मैं आपको एक बात सुनाऊं, 82 की बात है। इस बात ने मुझे एक बहुत सुंदर रोशनी दी थी। बाबा ने मुरली चलाते हुए कहा, तुम सोचते हो, पुरुषार्थ करते हो, मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है, पर तुम आज से संकल्प करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। बहुत सुंदर लाइट है इसमें। हूं तो जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं वो तेजी से हमारे जीवन में आने लगती है। इसलिए मैंने माताओं को उनके बच्चों के लिए एक बहुत छोटी सी बात सिखाई है, छोटे बच्चों से कराएंगे बहुत अच्छा होगा। मैं बुद्धिमान हूं, 3 बार बुलवा दो बच्चों को उठाते ही, देखना कैसे उनकी बुद्धि का विकास होता है। और अगर माँ घड़ी घड़ी एक लगा के बोलने लगे, बुद्धू है, पढ़ता ही नहीं, तो बुद्धू है तो वो बुद्धू ही बन जाएगा और जिम्मेदारी माँ की होगी। क्या बनाएंगी माताएं बच्चों को, बोलो ना। माताएं तो गुम हो गई सुनते ही। बुद्धिमान, बुद्धिमान बनाएंगे बुद्धू। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, आज बहुत दिन के बाद मुझे याद आया। मैं एक जगह अपने लौकिक में गया तो एक परिवार हमारे रिलेटिव कहा, हमारे घर भी आ जाओ 5 मिनट। मैं चला गया वहीं थे सेंटर के पास, तो माता कहने लगी, उसका छोटा बच्चा था, मेरे इस बिच्छू को भी सुधार के जाओ। अब वो बेचारा छुपने लगा माँ के कपड़ों में ही, बिच्छू कह दिया मुझे। मैंने कहा, मैं उसको जरा प्यार किया, कहा इसका नाम क्या है, कि नहीं इसका नाम बिच्छू ही रखा हुआ है। तो मैंने कहा, ये तो डंक मारेगा ही ना तुम्हें, जब तुमने इसका नाम ही बिच्छू रख दिया है तो ये तो डंक मारेगा ही, नाम बदल दो इसका, आज से इसका नाम देव कुमार रख दो। मान लिया बच्चा, खुश, माँ को छोड़ के मेरे पास आ गया देव कुमार। फिर मैं गया कई साल के बाद, तो वो मिली मुझे। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे बिच्छू का क्या हाल है, तो वो पास ही था, कहा ये है अभी 10वीं में आ गया है, अब ये सचमुच देवता है। नाम बदलने से संसार उसका बदल गया, ये सत्य बात है। ये गहरा मनोविज्ञान है कि हमारी वृत्ति, अब निश्चित है बच्चे माँ को तंग तो करते ही हैं, करते हैं। एक माँ ने कहा, मैं योग में बैठती हूँ, 2 बच्चे हैं, वो मेरे कंधों पे चढ़ जाते हैं, बाल खींचते हैं, बड़ा मजा आता है। मैंने कहा, उनको मजा आता है ना, तुम बैठिए एकदम एक रस, उनको मजा आता है तो चढ़ जाते हैं, मजा लेते हैं वो भी। मैंने कहा, उनको खेलने दो ना गोद में, तुम अपना योग करती रहा करो। वो तंग होती थी, उन्हें हटाती थी, मारती थी, वो ओराते थे ज्यादा। मैंने कहा, उन्हें खेलने दो। वो खेलते रहे, बच्चे शांत हो गए। माँ ने रिएक्शन नहीं किया, बच्चे ही शांत हो गए, छोटे थे। तो हम अपनी वृत्तियों को महान बनाएं और अपने स्वमान को बढ़ाते चलें। देख लें हम किस स्वमान में रहते हैं। क्या हमें विश्वास है जो कुछ बाबा हमें कहते हैं। मैं 1-2 स्वमान आपको याद दिलाता हूँ, साकार मुरलियों में ही आता है। तुम इस संसार के लिए लाइट हाउस हो। अब एक कॉमन व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है क्या कहा जा रहा है हमें। भगवान बोल रहा है, तुम इस संसार के लिए लाइट हाउस हो। लाइट हाउस माना राह दिखाने वाले हैं ना हम। भगवान ने हमें राह दिखाई, हम संसार को राह दिखाने वाले हैं। स्वीकार करें। दूसरा स्वमान सुन ले आप, तुम इस सृष्टि पर मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम्हारी किरणों से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं, तुम्हारी किरणों से संसार का अंधकार नष्ट हो रहा है। पूछो अपने से, क्या हम इसको स्वीकार करते हैं? मैंने कईयों से ही अभ्यास कराए, माताओं से ही कराए, जिन्होंने कहा हमारे घर में बहुत अशांति है, सभी लोग लड़ते हैं। मैंने पूछा कोई विशेष बात होती है? विशेष बात कुछ नहीं, छोटी बात हो गई झगड़ते रहते हैं। तो मैंने सिखाया कि दिन में 5 बार एक एक मिनट बैठ के अभ्यास कर लेना, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और मेरे अंग अंग से शांति की किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। 1 मिनट केवल एक बार, कुछ ही दिन में ठीक होने लगा। तो हमारे ये स्वान बहुत ही प्रभावशाली हैं, हम इन पे बहुत ध्यान देंगे तो मुरलियों में रोज आता है, स्वमान वाले को न अभिमान होता न अपमान करने की वृत्ति होती। इस मूल्य में भी था शायद, तो न अभिमान रहेगा न वो किसी का अपमान करेंगे। और इससे आगे भी एक बात हो जाएगी, उनका कोई अपमान करेगा तो उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं होगी। बहुत ऊंची स्थिति है ये स्वमान की। स्वमान से आत्मा इतनी भरपूर हो जाती है, अपने आंतरिक सुख में इतना रहने लगती है, किसी के किसी का अपमान उन्हें अपमान लगेगा ही नहीं, सहज हल्का लगेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को कितने लोग गाली देते थे, ऐसे शब्द बोलते थे कि सुना भी न जाए, वो संपूर्ण निर्विकारी, और लोग क्या क्या बोल देते थे। लेकिन स्वमान धारी इतने ज्यादा थे कि उन्हें लगता ही नहीं था कोई अपमान करता है, बच्चे हैं कोई बात नहीं सब समझ जाएंगे। तो हम स्वमान को बढ़ाएं, अपमान की फीलिंग भी समाप्त होगी, अपमान करने की वृत्ति भी खत्म और अभिमान भी नष्ट होगा। ओम शांति।